आप इस समय श्रीमद् भागवतम में महाराज चित्रकेतु की कथा सुन रहे हो। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं और भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन है और साथ में भगवान के भक्तों द्वारा महत्वपूर्ण संदेश भी हमें दिया जा रहा है। यहां पढ़ रहे हो महाराज चित्रकेतु की कथा। चित्रकेतु महाराज कौन थे? राजा थे, बड़े खूबसूरत, धनी, हर प्रकार की सुविधा थी उनके पास, और एक नहीं दो नहीं उनकी करोड़ों पत्नियां भी थी, करोड़ों। आप भौतिक दृष्टि से शायद इसे स्वीकार नहीं करो, पर भागवत में इसका वर्णन है कि उनकी करोड़ों पत्नियां थी, पर इन सब पत्नियों द्वारा कोई औलाद नहीं थी। पहले उन्होंने एक पत्नी से शादी की थी, अकबर से, अकबर से, और इस कारण हालांकि राजा के पास हर प्रकार का भौतिक सुख था, पर वो दुखी रहता था कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, खास करके बेटा नहीं था, तो इसलिए वो हमेशा उदास रहता था। और राजा है था, राजा के लिए तो बेटा होना अवश्य होता था। तो एक दिन वहां एक संत आए जिनका नाम था अंगिरा ऋषि, और संत आए उनके महल में, राजा ने उनका स्वागत किया। अब भागवत में पढ़ते हो कि जो हमारे राजा थे बड़े आदर के साथ संतों की स्वागत करते थे। उदाहरण के लिए भागवतम के 34 खंड में आप पढ़ते हो कि चार कुमारा हैं ब्रह्मा के पुत्र, वो गए प्रीतु महाराज के महल में, और प्रीतु महाराज वैसे भगवान के शक्तावेश अवतार है, और प्रीतु महाराज ने उनके चरण धोए और उनसे विनती की कि हमें शिक्षा दो कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। जो राजा थे वो संतों को आदर देते थे, उनकी शिक्षा की भीख मांगते थे उनसे। तो अंगिरा ऋषि जब आए महाराज के महल में, तो चित्रकेतु ने उनका स्वागत किया, चरण धोए, उनके चरण में बैठे, और राजा और अंगिरा मुनि उनका स्वभाव देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तो अंगिरा मुनि ने पूछा, कैसे है सब कुछ? आप मिलते हो किसी को तो क्या पूछते हो, हाउ आर यू, कैसे हो? तो अंगिरा ऋषि ने पूछा, सब ठीक है? तो राजा ने कहा, जो असलियत थी, भगवान की दया से सब सुविधा तो है, पर आप संत महात्मा हो, आपसे हम क्या छुपा सकते हैं, आप तो हर चीज जानते हो। वैसे अंगिरा मुनि कोई साधारण संत तो नहीं थे, और वो आए थे चित्रकेतु के महल में उनका उद्धार करने के लिए। तो राजा ने कहा कि हालांकि मेरे पास हर चीज की सुविधा है, कोई पुत्र नहीं है मेरे खानदान में, और इस कारण मैं सदा निराश और बेचैन रहता हूं। संत ने उन्हें एक वर दिया, कहा तुम्हारा एक पुत्र होगा, पर वो पुत्र सुख का कारण बनेगा और दुख का कारण भी बनेगा। तो राजा में इतना उत्साह था पुत्र के लिए कि जब संत ने उन्हें सूचना दी कि वो खुशी का कारण बनेगा, हर्ष का, और बाद में शोक, कष्ट का, वो समझ नहीं पाए संत के असली भाव क्या था। राजा ने सोचा, ठीक है, बड़े होने पर बाप का कहना नहीं मानेगा, सह लूंगा, बेटा तो है। प्रभा जी कई बार कहते थे बंगाली में कहावत है, ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल. क्या बंगाल में क्या है, अंधा अंक चाचा चाचा नहीं होने से तो ज्यादा अच्छा है. तो महाराजचंद्र के तो सोच रहे थे ठीक है बेटा तो होगा, कहना नहीं मानेगा तो सह लेंगे थोड़ी बेइज्जती. और थोड़े समय बाद उनकी एक पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया. और जब जन्म दिया तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उस पुत्र का नाम उन्होंने क्या रखा, हर्ष अशोक. हर्ष का अर्थ है खुशी आनंद, शोक का अर्थ है कष्ट शोक. तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, करोड़ों गायें दान में दे दी, सोना चांदी सब ब्राह्मणों को दान में दे दिया. और राजा ज्यादा समय बेटे और बेटी की जो मां है उसको देने लगा, लगभग पूरा समय. और जो दूसरे पत्नियां थीं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, बिल्कुल नहीं. तो पत्नियों के मन में ईर्ष्या हुई, उन्होंने कहा कि अब तो राजा सारा समय हर्ष शोक और उसकी मां को दे रहा है और हमें समय नहीं देता. तो उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष था. भौतिक संसार में ईर्ष्या और द्वेष से हमें बचना चाहिए. ईर्ष्या और द्वेष के कारण हम भौतिक संसार में भटकते रहते हैं. चैतन्य महाप्रभु ने मोगा को कहा जब तक हृदय में ईर्ष्या और द्वेष रहेगा भगवान मान्य विराजमान नहीं होंगे. तो ईर्ष्या और द्वेष से हमें बचना चाहिए. खैर इन पतियों ने ईर्ष्या और द्वेष के प्रभाव में आकर बेटे को हर्षशोक को जहर खिला दिया. और जब हर्षशोक की मां लौटी तो वो सोच रही थी मेरा बेटा तो सो रहा है, सोने दो, गहरी नींद में. फिर जब उसने अपनी नौकरानी को कहा जाओ बेटे को उठाओ, वो बहुत ज्यादा सो लिया है, आप तो टेलीफोन बंद करोगे. आजकल मोबाइल फोन के बगैर रहना बड़ा कठिन हो गया है. इंग्लैंड में एक सर्वे हुआ था जिसमें यह निकला कि 40% लोग इंग्लैंड में मोबाइल फोन के साथ सोते हैं. और घर के किसी सदस्य को सुबह गुड मॉर्निंग कहने से पहले मोबाइल फोन में देखते हैं क्या है संदेश. आजकल तो इतना प्रेम है मोबाइल फोन के साथ. तो आप लोग जब भगवतम क्लास में आते तो मोबाइल फोन को बंद करके आया करो. तो जब राजा को यह सूचना मिली कि बेटे का देहांत हो गया तो राजा अत्यंत दुखी हो गए. राजा रोने लगा बच्चे जैसे, यही सोचते हुए कि मेरा बेटा था, बेटा ने जीवन त्याग दिया, मर गया है. राजा अत्यंत दुखी था. तो फिर अंगिरा मुनि वापस लौटे उनके महल. मैं आपको संक्षेप में कह रहा हूं, अंगिरा मुनि फिर लौटे वापस राजा को उपदेश देने के लिए. और अंगिरा मुनि अकेले नहीं लौटे, किसके साथ लौटे, नारद मुनि के साथ. पहले वो अकेले आए थे पर अब वो लौटे भागीदार के साथ, नारद मुनि के साथ. जब चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रचार का आंदोलन आरंभ किया तो अक्सर अपने भक्तों को जोड़ी में भेजते थे, जैसे हरिदास और नित्यानंदा एक साथ गए थे घर घर प्रचार करने के लिए. तो नारद मुनि और अंगिरा ऋषि दोनों आए दोनों ने देखा कि राजा रो रहा है, शोक में है, दुखी है। दोनों ने पूछा क्या है कारण इसका। अंगिरा मुनि ने कहा पिछले दफे तुम्हें आया तो तुम बड़े आनंद में थे। फिर चित्रकेतु ने कहा क्या है कारण। कारण सुनने पर वैसे तो अंगिरा ऋषि और नारद मुनि को पता था क्या है कारण, पर कारण सुनने पर उन्होंने उपदेश दिया। क्या उपदेश? ये उपदेश दिया, क्या तुम रो रहे हो, सोचो कि तुम्हारे बेटे का देहांत हो गया, पर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया जिसके द्वारा ये संदेश है कि आत्मा है सनातन, शरीर है नश्वर। आपकी जान पहचान कितनी देर के लिए थी उनके साथ? एक साल के लिए। एक साल से पहले ना आप जानते थे बेटा कौन है, उसे पता नहीं था बाप कौन है। तो अंगिरा मुनि और नारद मुनि, अंगिरा ऋषि और नारद मुनि ने बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया। तो उपदेश सुना चित्रकेतु ने बड़े ध्यान से, और उपदेश सुनने के पश्चात महाराज चित्रकेतु अब उसका उत्तर दे रहे हैं। इतनी देर अंगिरा ऋषि और नारद मुनि ने उन्हें उपदेश दिया, आध्यात्मिक उपदेश, और आज के जो हमने श्लोक पढ़े हैं उनका उच्चारण महाराज चित्रकेतु कर रहे हैं। वो महाराज चित्रकेतु श्लोक सुना रहे हैं किसे? अंगिरा मुनि और नारद मुनि। तो कह रहे नौवें श्लोक में आप पढ़ते हो कि शुक्र गोस्वामी ने कहा कि अंगिरा और नारदा की शिक्षा से चित्रकेतु की अज्ञानता दूर हो गई। तो इसलिए कहा गया है कि हमें संतों की संगत में रहना चाहिए। उनकी अज्ञानता कैसे दूर हुई? उपदेश सुनकर। कई बार दुर्घटना होती है किसके घर में और हमारे भक्त जाते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवद गीता का उपदेश सुनाते हैं, तो लोगों का जो शोक है वो कम हो जाता है। आप श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंध में पढ़ते हो कि जब हिरण्याक्ष का देहांत हुआ तो उनकी पत्नी और बच्चे बेटे बड़े दुखी थे, हमारे पिता का देहांत हो गया। तो हिरण्याकशिपु, जिसको आप असुर के रूप में जानते हो, वो थे वो बड़े भक्त भगवान के। तो हिरण्याकशिपु वहां गए, उन्होंने कहा शोक क्यों कर रहे हो, हम सब थोड़ी देर के लिए इकट्ठे होते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। और हिरण्याकशिपु ने उदाहरण दिया जैसे किसी भोजन के स्थान में हर व्यक्ति आता है, भोजन खाता है, फिर अपने अपने रास्ते चलता है। आप गाड़ी में यात्रा करते हो, कईयों को मिलते हो, पर स्टेशन आने पर हर व्यक्ति अपने अपने रास्ते पर चल के जाता है। हिरण्याकशिपु ने कहा कि हम सब इकट्ठे होते हैं थोड़ी देर के लिए, और उनकी उपदेश देने के पश्चात उन्होंने आगे एक कथा सुनाई कि एक समय एक राजा का देहांत हो गया था युद्ध के मैदान में, और जब समय था शरीर को शमशान घाट ले जाने के लिए, पत्नियों ने इजाजत नहीं दी, जोर से रोने लगी, इतनी जोर से कि आवाज यामराज तक पहुंच गए। यामराज ने सोचा कि मुझे इन्हें सबक सिखाने दो, शिक्षा देने दो। तो यामराज जी आए एक छोटे निर्दोष बालक का रूप ग्रहण करके, और यामराज ने कहा देखो ये सब रो रहे हैं पर ये नहीं जानते कि इनका जीवन भी आस्ते आस्ते समाप्त हो रहा है। और आगे उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक समय एक शिकारी था, शिकार करने गया था, और उसने एक पक्षी को पकड़ लिया अपनी जाल में। उसके पत्नी, उसके पति और बच्चे रो रहे थे, फिर हंसते हंसते बच्चे भी फंस गए जाल में और पति भी फंस गया। तो यमराज जी ने एक कथा सुनाई ये बताने के लिए, आज हम शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं उनके लिए, पर हम ये नहीं जानते कि हमारा शरीर भी दिन पे दिन मृत्यु के निकट जा रहा है। तो जो संत हैं वो शास्त्र पर आधारित शिक्षा देते हैं। शास्त्र पर आधारित शिक्षा दोगे तो ही अज्ञानता दूर हो सकती है। तो यहां महाराज चित्रकेतु आभारी हैं किसके प्रति? नारद मुनि और अंगिरा ऋषि के प्रति। और उनकी जो उनका जो उदासी था, शोक था, वो दूर हो गया और वो फिर बोलने लगे। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम हर स्थिति को शास्त्रों की दृष्टि से देखें, भौतिक दृष्टि से नहीं। वो शास्त्रों की दृष्टि से अगर देखने जाओगे तो क्या उपदेश मिलता है? भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान हमें ये उपदेश दे रहे हैं, शरीर नश्वर है सबका, हाँ धेन अस्मिन यथा देह है, और जो आत्मा है ये है सनातन। इसका ना कभी जन्म होता है ना ही अंत आता है। जिस प्रकार हम अलग अलग पोशाक ग्रहण करते हैं, अलग अलग पोशाक बदलते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा एक जैसे स्वीकार करती है। और थोड़े समय के लिए प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि द्वारा उपदेश ग्रहण किया था। तो प्रहलाद महाराज जी सातवें स्कंद में कहते हैं, हे मूर्ख व्यक्ति, चाहे तुम कितना भी प्रयास करोगे तुम्हें उतना ही सुख मिलेगा जो तुम्हारा कोटा है, उसे ज्यादा एक बूंद सुख नहीं मिलेगा। एक बूंद, वन ड्रॉप, चाहे आप कितना भी परिश्रम कर लो। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिस प्रकार दुख आता है बिना मांगे, सुख भी आएगा बिना मांगे, पर उतना ही जो आपका खोटा है। तो हम सब थोड़े समय के लिए इकट्ठा होते हैं, माता पिता पति पत्नी के रूप में, और समय के साथ ये संबंध जो है जुदा हो जाता है। तो शास्त्र की दृष्टि से अगर आप समझो तो आप हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, तो धीरा व्यक्ति है वो इन स्थितियों से विचलित नहीं होता। तो महाराज चित्रकेतु आभारी हैं नारद और अंगिरा के, क्योंकि उनकी शिक्षा से उनकी अज्ञानता दूर हो गई है। हम एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शुक्लस्य चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्रीरामाय। हम सबको जन्म हुआ था अज्ञानता में, पर गुरु साधु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा यह अज्ञानता दूर हुई है। तो हम सब जन्म लेते हैं अज्ञानता में। आगे महाराज चित्रकेतु कह रहे हैं कि आप हो आत्मज्ञानी व्यक्ति, तो जब भी आप अपना असली रूप को छुपा रहे हो, आप हर चीज को जानते हो, और आप हो असली महात्मा। तो असली महात्मा कौन है? प्रभुपाद जी ने अनेक समय इस विषय पर की चर्चा की है। असली महात्मा वो है, महात्मा नस्य महां पर था, जो कि शास्त्रों का उपदेश करता है, शास्त्रों की चर्चा करता है, और शास्त्रों पर आधारित अपने जीवन को बिताता है, वो है असली महात्मा। तो यहां महाराज चित्रकेतु कह रहे हैं, आप दोनों जो हो आत्मज्ञानी व्यक्ति हो। वैसे तो नारद मुनि भगवान के चतुर्वेश अवतार हैं। नारद मुनि का केवल एक ही भाव रहता है सदा, और भाव यह है कि हर व्यक्ति को नारायण का उपदेश दिया जाए, और कोई भाव नहीं, चाहे मृगारी हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे व्यासदेव हो, नारद मुनि का एक ही भाव है, वो है चतुर्वेश अवतार। भगवान के अवतारों के कई विभाग हैं, जैसे कि पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवतार अवतार, युग अवतार और चतुर्वेश अवतार। शक्तेश अवतार के भी दो विभाग हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो नारद मुनि और अंगिरा ऋषि दोनों कौन हैं? आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं। तो यहां चित्रकेतु तो कह रहे हैं कि आप दोनों आत्मज्ञानी हो, पर आपने असली रूप जो आपका है छुपाया है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति हो भी, वो ये दावा नहीं करता कि मैं आत्मज्ञानी हूं। इस विषय में एक कृष्णदास काविराज, जिन्होंने हमें चेतन चरितमृता नाम का ग्रंथ दिया है, चेतन चरितमृता में चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा और लीलाओं का वर्णन है। वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान। तो कृष्णदास काविराज जी कहते हैं कि जिस भक्त में भगवत प्रेम भी हो, वो सदा यही सोचता है कि मेरे हृदय में एक बूंद प्रेम नहीं है। दूसरे शब्दों में, उसमें विनम्रता का भाव रहता है। ये नहीं मैं इतना ऊंचा भक्त हूं, इतना एडवांस हूं। जिसके हृदय में भगवत प्रेम भी हो, वो क्या सोचता है? मेरे हृदय में एक बूंद प्रेम नहीं है, मैं सबसे पतित हूं। जैसे आप लोग एक भजन अक्सर गाते हो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, इस भजन की रचना की थी नरोत्तम दास ठाकुर ने, जो स्वयं भगवान के बड़े ऊंचे कोटि के भक्त थे। तो वो इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? पतित पवन हेतु तव अवतारा, आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए, और सब पतितों में सबसे पतित कौन है? मैं हूं सर। इसलिए मुझे आपकी कृपा सबसे पहले प्राप्त होनी चाहिए। तो भक्तों के मन में यह भाव रहना चाहिए कि हम सबसे पतित हैं। कई बार हम सुनते हैं भक्तों में अनबन है, भक्तों का तालमेल नहीं चल रहा, ठीक नहीं है या क्या? इन सब के पीछे कारण क्या है? अहंकार। हर व्यक्ति सोचना चाहता है मैं सबसे प्रसिद्ध हूं, सबसे अच्छा हूं, सबको मेरे आदेश के अनुसार कार्य करना चाहता हूं। अगर हमारे में यह विनम्रता का भाव हो, तो आप हरि नाम का भी उच्चारण कर सकोगे ज्यादा सरलता से, और भक्ति में भी आगे बढ़ सकोगे। तो यहां चित्रकेतु कह रहे हैं आप आत्मज्ञानी हो, पर आप लोग ने अपने असली स्वरूप को छुपाया हुआ है, क्योंकि आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी ये दावा नहीं करता मैं आत्मज्ञानी हूं। हमेशा यही सोचता है कि मेरे हृदय में बिल्कुल भगवत प्रेम नहीं है। और कहते हैं आप तो हर चीज के साक्षी हो, हर चीज को जानते हो, इसलिए आप सब भक्तों में सबसे प्रसिद्ध हो। आगे कहते हैं, आगे कहते हैं ब्राह्मण जो हैं और जो वैष्णव हैं, ये भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं। तो वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव कहते हैं जो भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं। तो ब्राह्मण और वैष्णव, और व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बनता है? व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित, ये भाव रखना कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, हम ऊंची जाति के हैं और हमारा चरित्र असुरों का हो, ये शोभा नहीं देता। ब्राह्मण व्यक्ति बनता है गुणों के आधार पर। और भगवद गीता में 18वें अध्याय में भगवान ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं। उस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं, शमो दमो तपो सोचम शांति रजम एवच ज्ञान विज्ञानम हस्ते क्यम ब्रह्म कर्म सभा गजा। ब्राह्मण वो है जिसमें एक गुण है, सहनशील, तपस्या, अध्यात्मिक ज्ञान। ये नहीं कि हमने दो पैसा का जेनू पहन लिया और हम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मणों के मन में सदा सेवा भाव होना चाहिए। हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले महान आचार्य थे जिन्होंने स्पष्ट समाज में ये प्रचार किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित, जन्म पर आधारित नहीं। तो जो ब्राह्मण है और वैष्णव है वो भगवान के अत्यंत प्रिय सेवक है। तो चित्रकेतु यहां कह रहे हैं जो ब्राह्मण है और वैष्णव भगवान के अत्यंत प्रिय सेवक है। तो व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित। एक समय भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि एक रूप से इस संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, प्रभा जी ने कहा भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव तिथि के दिवस पर, वर्चुअली ही इज द फाउंडर ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर पहले महान आचार्य थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को ठीक रूप से प्रस्तुत किया, अनेक ग्रंथों की रचना की और प्रचार का आंदोलन आरंभ किया। उनकी एक खास प्रार्थना थी कि भगवान उन्हें ऐसी औलाद भेजे जो कि आगे इस आंदोलन को चला सके, और वो कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो एक समय ब्राह्मणों की सभा में भक्तिनाथ ठाकुर को निमंत्रण दिया था, वो नहीं जा सके और भक्ति सिद्धांत जी गए। और भक्ति सिद्धांत जी ने अपने उपदेश देते हुए पहले तो ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन किया और ब्राह्मणों की आवश्यकता का वर्णन किया, क्योंकि ब्राह्मणों की तुलना की जाती है शरीर के सिर के साथ। समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ब्राह्मणों का अंग। और फिर आगे जाकर भक्ति सिद्धांत जी ने शास्त्रों के आधार पर ये स्थापित किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है जन्म के आधार पर नहीं, पर किसके आधार पर? कर्मों के अनुसार। हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में चाहे कोई नीची जाति का हो या ऊंची जाति का, चाहे मलेच्छा भी हो, वो ब्राह्मण बन सकता है। कब? अगर उसमें आध्यात्मिक गुण हो। एक समय किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, आप कुछ चमत्कार कर सकते हो स्वामी जी? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं साधु महात्मा चमत्कार भी करें। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, पर एक चमत्कार किया है। क्या? हजारों मलेच्छों को मैंने ब्राह्मण बना दिया। मलेच्छा उसे कहते हैं, मलेच्छा उसे कहते हैं जो कि हर प्रकार के पाप के कार्य में जुड़ा हुआ है। वो ब्राह्मणों से कहते हैं जिसमें शास्त्रों के गुण हो और जो शास्त्र पर आधारित जीवन को बिता रहा है। तो ब्राह्मण और वैष्णव जो हैं भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त सेवक हैं, और उनका एक ही भाव रहता है, अज्ञानता के लोगों को संतुष्ट किया जाए, लोगों की अज्ञानता को दूर किया जाए। इसलिए जो ब्राह्मण और वैष्णव है क्या करते हैं, वो हमारी अज्ञानता को दूर करने के लिए घर घर जाते हैं प्रचार करने के लिए, और इसी भाव को जो भाव है ये ग्यारहवें श्लोक का यही भाव 12 से 12वें श्लोक में भी प्रस्तुत किया गया है। चित्रकेतु महाराज ने अनेक संतों का वर्णन किया है, सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवला, असीता, अपंत, व्यासदेव, ये अनेक संतों का वर्णन किया है। ये बताया है कि जो अनेक संत हैं इन सब के मन में एक ही भाव है। क्या है वो भाव? हर व्यक्ति को भगवान का उपदेश दिया जाए, और भगवान का उपदेश देने के लिए ये संत महात्मा क्या करते हैं, क्या करते हैं? वो घर घर जाते हैं भगवान का संदेश लेकर। आज के चार श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो महात्मा पुरुष हैं वो संसार के कोने कोने में जाते हैं, किस लिए? असली ज्ञान का वितरण करने के लिए। भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु कहते थे कि अगर इस संसार में किसी चीज की कमी है तो किस चीज की कमी है? इस अध्यात्म ज्ञान की कमी है। अगर आप संडे का अखबार पढ़ोगे तो संडे को जब मोटा अखबार आता है ना, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा समय होता है तो लोग सोचते हैं ज्यादा पढ़ेंगे। संडे वाले दिन न्यूयॉर्क में एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, वो न्यूयॉर्क टाइम्स आता है कोई 200 पेज का, इतना भारी संडे एडिशन। तो एक रूप से लोग अखबार पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, पर इन इंसानों में भगवान का असली ज्ञान थोड़ी है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत जी कहते थे अगर संसार में किसी चीज की कमी है तो किस चीज की कमी है? इस अध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं अंगिरा मुनि और नारदा के बड़े आभारी हैं, ये दो आए, उन्होंने मेरी अज्ञानता को दूर किया। वो कह रहे हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस विषय का वर्णन कर रहे हैं, जो संत महात्मा हैं वो घर घर जाते हैं, किस लिए? लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए, और असली ज्ञान का वो वितरण करते हैं। और एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो मनुष्य जीवन है इसका हमें उपयोग करना चाहिए, किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के संदेश का पालन करने के लिए। मनुष्य जीवन जैसे आप जानते हो, और आज के श्लोक के तात्पर्य में इसका वर्णन है, कठिनाई से प्राप्त होता है। शास्त्र में इस भौतिक संसार की तुलना की गई है एक भयंकर समुद्र दरिया के साथ, और जो मनुष्य देह है उसकी तुलना की गई है किसके साथ? नाव के साथ। और जो गुरु है जो आध्यात्मिक उपदेश दे रहा है उसकी तुलना की गई है किसके साथ? जहाज के कैप्टन के साथ। और जो शास्त्रों का उपदेश है, शिक्षा है, उसकी तुलना की गई है फेवरेबल विंड्स, वायु के साथ। जैसे अगर आप हवाई जहाज में भी जा रहे हो, अगर हवाई जहाज में जा रहे हो तो वायु भी उसी तरफ जा रही है तो आपको कम समय लगता है। तो शास्त्र में कहा गया है इस मनुष्य जीवन का हमें उपयोग करना चाहिए, किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। तो इस श्लोक में, इन चार श्लोकों में अनेक संतों का वर्णन किया गया है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं इनका वर्णन महाभारत में भी है, और जैसे उदाहरण के लिए कपिलदेव भगवान ने हमें समक योग का उपदेश दिया, और यहां चित्रकेतु महात्मा कह रहे हैं कि आप सब के मन में एक ही भाव है कि घर घर जाकर अज्ञानता को दूर करने के लिए। तो आप सब जो इस्कॉन के साथ जुड़े हो, कैसे जुड़े? प्रभुपाद जी की असीम कृपा के कारण। प्रभुपाद जी भी जैसे आप जानते हो वृंदावन में थे और बूढ़ी आयु में अमेरिका गए, कोई जवान आयु में नहीं। प्रयास किया था प्रभुपाद जी ने विदेश जाने के लिए, क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज का आदेश था। छह भक्ति सिद्धांत जी की हार्दिक इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सत्य बनाया जाए। और क्या थी महाप्रभु की भविष्यवाणी? पृथ्वी आचित जता नगराधिक्राम सर्वत्र प्रचार हो मुड़ना, विश्व के हर कोने में यह हरिनाम पहुंचेगा। तो भक्ति सिद्धांत जी ने प्रयास किया, अपने सन्यासी शिष्यों को भेजा विदेशों में, और कई शिष्य ज्यादा सफलता बिना लौट गए। तो गौड़िया वैष्णव भी सोच रहे थे, हां महाप्रभु जी की भविष्यवाणी तो है, पर लगता है कलियुग तेजी से बढ़ रहा है, संभव नहीं हो पाएगा। पर बाकी सिद्धार्थ जी को पूरा विश्वास था और उन्होंने प्रभुपाद जी को पहली मुलाकात में ही आदेश दिया कि ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। और प्रभुपाद जी के मन में भी पूरा विश्वास था कि अगर मैं अपने गुरु के वचन का पालन करूंगा, प्रयास करूंगा, भगवान जरूर सफलता देंगे। और आप भक्तों ने लीलामृत में पढ़ा होगा कि भारत में कितनी बार प्रभुपाद जी ने प्रयास किया पर इतनी सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। पर जब भी वो हौसला नहीं छोड़ा, उनका हौसला समाप्त नहीं हुआ, उनमें उतना ही उत्साह था। रूपक गोस्वामी जी कहते हैं, अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो तो क्या किस चीज की आवश्यकता है? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संगत के आगे सतवृद्ध सद्वीर भक्ति प्रसुद्धि। तो इन अनेक गुणों में एक गुण क्या है? उत्साह। तो प्रभुपाद जी कहते थे हम भक्तों को, मेरे में हमेशा उत्साह था चैतन्य महाप्रभु जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। तो अंत तक उत्साहित थे। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा प्रयास किया और जैसे आप जानते हो फिर अमेरिका पहुंचे। वहां पहुंचकर भी हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा, पर जब भी वो घबराए नहीं, बड़े उत्साह के साथ प्रयास करते गए। तो जो भगवान के भक्त हैं वो कठिनाई को भी उठाते हैं, किस लिए? भगवान का प्रचार करने के लिए। और उनके मन में यही भाव रहता है कि ये भगवान का उपदेश आगे पहुंचाना चाहिए। और इस उपदेश को आगे पहुंचाने के लिए अगर उन्हें कठिनाई भी अनुभव करनी पड़े तो सह लेते हैं। ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि अगर हम भगवान के भक्त बन गए तो हमें किसी प्रकार से कठिनाई को अनुभव नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज का हम गुणगान करते हैं, उन्हें महात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रहलाद महाराज के जीवन में आप देखते हो उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कितनी कठिनाइयों का सामना। तो अगर प्रहलाद महाराज इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करते तो इतने बड़े हीरो नहीं होते भक्तों के लिए, है कि नहीं? कुंती देवी जी प्रार्थना करती हैं, हे भगवान आज मेरे कष्टों को बढ़ाओ, क्योंकि जितने कष्ट बढ़ते हैं विपाद संतुता शाश्वत उतने ही ज्यादा आपका चिंतन मैं करती हूं, और जितना ज्यादा चिंतन करूंगी उतनी तेजी के साथ ही जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। ये था उनका भाव। तो आप देखते हो कि भगवान के जो प्रसिद्ध भक्त भी हैं उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रहलाद महाराज को उदाहरण के लिए जैसे हम कह रहे थे कितनी कठिन परिस्थितियों में गुजरना पड़ा, पर उन्होंने सह लिया। तो इसलिए भगवान के जो भक्त हैं दे बिकम मोर ग्लोरियस, उनकी महिमा और बढ़ती है। कब? जब वो कठिन स्थिति में रहते हुए भगवान की भक्ति करते जाते हैं। आप चैतन्य चरितमृत में हरिदास ठाकुर की कथा भी पढ़ते हो। वैसे तो हरिदास ठाकुर का हम सब आदर देते हैं। 3 लाख बार दिन में जाप करते थे सुबह से रात तक, उनके मन में एक ही भाव था। वह हरिदास को जब ये कहा गया काजी के द्वारा, जो नवाब था वो इतना कठोर नहीं था, वो जो काजी था वो बड़ा कठोर था। काजी ने कहा हर स्थिति में रोको बंद करो ये हरि नाम का उच्चारण, और हरिदास जब भी उच्चारण करते गए। और फिर काजी ने कहा ले जाओ इसको अलग अलग बाजारों में और पीटो इसे जब तक ये शरीर को नहीं त्यागता। तो जो काजी के नौकर थे वो हरिदास को घसीट कर ले जा रहे थे एक बाजार से दूसरे बाजार। अक्सर उनका अनुभव यह था कि दूसरे बाजार में व्यक्ति शरीर त्याग देता था, तो दूसरों को उन्होंने घसीटा। पहले बाजार में इतना मारते थे और दूसरे बाजार में पहुंचने तक जीवन समाप्त हो जाता था। पर हरिदास को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचे, पांचे से छठे, 22 बाजारों में घसीटा। जब भी हरिदास ने शरीर नहीं त्यागा, जब भी वो जाप करते गए। तो ये नहीं कि भगवान के भक्तों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, पर भगवान के जो भक्त हैं वो हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, विचल नहीं होते, वो सेवा में जुड़े रहते हैं। ये है सफलता का भाव का असली मार्ग। उनके मन में हमेशा विनम्रता का भाव होता है। जैसे हरिदास के उदाहरण में आप देखते हो, जब हरिदास ठाकुर 22वें बाजार में पहुंचे उनको घसीट कर उनके काजी के सेवक, तो वो घबरा रहे थे। अब 22 बाजारों में घसीट ले, अभी तक ये मरा नहीं, राजा ने हमें नहीं छोड़ना जिंदा। तो हरिदास के मन में भाव आया, क्या चिंता थी, 22 बाजारों में इन्होंने मुझे घसीटा है, मैं अभी तक जिंदा हूं, तो राजा इन नौकरों को नहीं छोड़ेगा। हालांकि इस स्थिति में कोई और व्यक्ति होता तो क्या सोचता, बदला कैसे लिया जाए, कैसे भागू। पर हरिदास सोच रहे थे जो उनके दो पीटने वाले हैं वो उनको कैसे बचाया जाए। हरिदास ने ऐसा व्यवहार किया, उनके पास योगिक सिद्धियां भी थी, ऐसे लगा कि वो मर गए, बड़े बड़े खुश हुए, नाचने लगे। उन्होंने सूचना दी राजा को मर गए। राजा ने कहा इसको दबा दो मुसलमानों को जैसे करते हैं। काजी ने कहा नहीं, ये इतना पापी व्यक्ति था, इसको हम मुसलमानों का बड़ियल नहीं दे सकते, इसको नरक में जाने दो, फेंक दो इस लाश को गंगा में, जानवर खाएंगे। तो उन्होंने हरिदास की लाश को फेंक दिया गंगा में। वो हरिदास होश में आए, तैर कर दूसरी तरफ पहुंचे, उन्होंने जाप फिर शुरू कर दिया। और जब राजा को सूचना मिली कि वही व्यक्ति जिनको पहले हमने डेड डिक्लेयर कर दिया था, ये कह दिया मर गए, और वो आज वो उस पेड़ के नीचे बैठकर जाप कर रहा है, भजन कर रहा है, राजा समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति था। और उनके चरण में वो पहुंचे, उनके शरणागत हो और उनसे माफी मांगी। तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करते हैं, क्योंकि इन श्लोकों में महाराज चित्रकेतु ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि अंगिरा मुनि और नारद ऋषि जैसे जो भक्त हैं वो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। किस लिए? भगवान का संदेश आगे पहुंचाने के लिए, लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए। यही भाव था चैतन्य महाप्रभु का भी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने एक दिन सारे भक्तों को बुलाया और अपने भक्तों से कहा, तुम सब घर घर जाकर प्रचार करो, क्या उपदेश दो, बोलो कृष्णा, बाजो कृष्णा, करो कृष्ण से। हर व्यक्ति को कहो कृष्णा का नाम लें, कृष्णा का भजन करें, कृष्णा की शिक्षा को अपनाएं। तो ये था चैतन्य महाप्रभु जी का भी भाव, और इसने उन्होंने अपने भक्तों को भेजा घर घर प्रचार करने के लिए। और हमारे जो महान आचार्य हैं उनका भी यही भाव था, ठाकुर भक्तिनाथ का भी यही भाव था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था ठाकुर भक्ति चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर, जो उन्होंने भेजा विश्व के जितने महाविद्यालय थे। और फिर भक्ति सिद्धांत जी में भी यही भाव था, और भक्ति सिद्धांत जी ने यही आदेश दिया प्रभुपाद जी को। जब एक समय भक्ति सिद्धांत जी हजारों शिष्यों के साथ ब्रजमंडल परिक्रम कर रहे थे, तो वृंदावन में आए राधाकुंड में, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक खास आदेश दिया, कहा कि अगर भगवान हमें तुम्हें सुविधा दें तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और वितरण करना। और इस सेवा को उन्होंने खास नाम दिया बृहद मृदंगा, बृहद मृदंगा। साधारण मृदंगा की आवाज तो थोड़ी दूर तक जाती है, पर ग्रंथों की आवाज बहुत दूर तक जाती है। आप दिल्ली में ग्रंथ बांटो, कोई उसका अध्ययन कर सकता है लंदन में। तो इसी कारण प्रभुपाद जी ने भी इस संस्था में प्रचार के कार्य पर बल दिया, और इसी कारण इस संस्था के भक्त सारे विश्व में प्रचार के कार्य को बल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये है हमारे महात्माओं की इच्छा। जैसे आप यहां देख रहे हो चित्रकेतु महाराज शोक में थे, अत्यंत दुखी थे, उदास थे, अज्ञानता में। हम सोचते हैं कि भौतिक प्रबंध द्वारा हमें सुख मिल जाएगा, इसलिए हम देखते हैं अज्ञानता में हम परिश्रम करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, पर असली सुख प्राप्त नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज कहते हैं नाते विदुम स्वर्ग गति में विष्णु, कि आज लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं वो ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। तो जो कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं वो ये जानते हैं। और आप सब कैसे जुड़े हो, एक समय था जब श्रील प्रभुपाद जी आपके इस शहर में प्रचार कर रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था, वन मैन आर्मी। प्रभुपाद जी हर कार्य अकेले करते थे, ग्रंथों का अनुवाद, उनको प्रकाशन करना, वितरण करना, धन इकट्ठा करना, सब अकेले। पर प्रभुपाद जी ने वो घबराई नहीं, हालांकि उन्हें अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो प्रचार करते गए, प्रयास करते गए, और अंत में उन्हें भगवान ने यह सफलता दी। तो जिस प्रकार अंगिरा ऋषि और नारद मुनि घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं लोगों की अज्ञानता दूर करने के लिए, वही भाव होना चाहिए हम भक्तों में भी। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं 18वें अध्याय में, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, कौन है जो मेरा प्रचार कर रहा है, उसे ज्यादा ना प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। तो ये जो प्रचार की सेवा है, और प्रचार की सेवा में अपमान भी महसूस अनुभव करना पड़ता है, प्रचार की सेवा में बेइज्जती भी होती है। हमारी क्या स्थिति है, नित्यानंद जी कौन है, स्वयं भगवान। हरिदास ठाकुर कौन है, नामाचार्य। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं, नित्यानंद जी बालराम जी के अवतार हैं। तो नित्यानंद और बालराम जब प्रचार कर रहे थे उनको भी अपमान सहना पड़ा, है कि नहीं? जगाय मदाई उनकी भी बेइज्जती की, उनका भी पीछा किया, उनको भी भगा दिया गाली देकर, जाओ यहां से। तो भगवान के जो भक्त हैं प्रचार के दौरान विचलित नहीं होते, अगर उन्हें किसी कठिन स्थिति का भी सामना करना पड़ा। और हर्षेश्वर की कथा से हम ये भी देखते हैं कि भौतिक संसार में अगर कोई कार्य हमें आनंद दे रहा है, हर्ष आज, कल वही कारण दुख का कारण भी बनेगा। आज मान लो आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है, आप भौतिक कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर रहे हो, पर स्वास्थ्य आज है तो कल बिगड़ेगा तो जरूर, और आप यही सोच रहे हो नहीं 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 स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहना चाहिए, और जब कष्ट आता है तब उदास हो जाते हैं। तो सबसे बेहतर उपाय क्या है कि हम सुख और दुख दोनों को सह लें और इसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। ये नहीं कि अगर सुख की स्थिति है तो यही सोचेंगे सुख की स्थिति हमेशा रहेगी। ये भौतिक संसार में हर चीज क्या है? अस्थाई है, हर चीज अस्थाई है, हर रिश्ता अस्थाई है। तो आप कहोगे महाराज तो अगर हर चीज अस्थाई है तो हमारे में कोई भावना नहीं होनी चाहिए रिश्तेदारों के प्रति, हमारे में ये भावना होनी चाहिए हम सबको भक्ति में जोड़ें। अगर आप माता और पिता हो तो अपनी औलाद को भक्ति में जोड़ो। भगवान ऋषभदेव जी क्या कहते हैं, व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपनी डिपेंडेंट औलाद को भगवान की सेवा में नहीं जोड़ सके। प्रयास तो करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता प्रयास करते हैं पर बच्चे साथ नहीं देते। खैर इन स्थिति में आप क्या कर सकते हो, तो कम से कम प्रयास तो करना चाहिए कि जो रिश्तेदार हैं उनको हम भगवान के सेवा में जोड़ने का प्रयास करें। और इस भौतिक संसार में जिस कार्य द्वारा भी आज आनंद आएगा तो वो ही कार्य क्या बन जाएगा? दुख का कारण बन जाएगा। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो जो संत महात्मा हैं वो चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश के अनुसार घर घर जाते हैं भगवान का उपदेश आगे बढ़ाने के लिए और भगवान का प्रचार करने के लिए। क्या है दो माध्यम? एक माध्यम है मंदिरों की स्थापना, दूसरा है ग्रंथों का वितरण। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप और सनातन को वृंदावन भेजा। रूप और सनातन एक समय एक समाज में उनका बड़ा ऊंचा पद था, वो हो उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, पर उनकी रुचि नहीं थी इस कार्य में। तो पहले रूप गोस्वामी ने अपनी नौकरी त्यागी, जब उन्होंने नौकरी त्यागी तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। और फिर सनातन ने अपनी नौकरी त्यागी, सनातन को जेल में भी जाना पड़ा। क्यों जेल में क्यों भेजा सनातन को? इसलिए कैदी बना दिया क्योंकि सनातन ने इनकार कर दिया राजा के आदेश का। राजा का आदेश क्या था? थम राज्य की जिम्मेदारी उठाओ। फिर सनातन ने कहा कि मेरी इच्छा है केवल सेवा करने की। तो रूप और सनातन को चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन में भेजा, और वृंदावन में भेजा दो खास आदेशों के साथ। एक था मंदिरों की स्थापना करने के लिए, दूसरा था ग्रंथों की रचना करने के लिए। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि ये दो कार्य हैं इस संस्था के मूल कार्य, एक मंदिर बनाना, दूसरा ग्रंथों को का वितरण करना, ग्रंथों को अनुवाद करने की चिंता नहीं है क्योंकि प्रभुपाद जी ने दिन रात मेहनत करके लगभग हमें 100 ग्रंथ वो छोड़ गए हैं और इन 100 ग्रंथों का अनुवाद आज 70 से अधिक भाषा में हो गया है। तो सारे विश्व में लोग इन ग्रंथों को आज पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से हमारा कार्य है मंदिर बनाना। मंदिर क्यों बनाते हैं? मंदिर बनने से लोग प्रभावित होते हैं, मंदिर बनने से सुविधा मिलती है लोगों को आकर भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते थे हम ऐसे तो पेड़ के नीचे बैठकर भी भजन कर सकते हैं। भगवान रूप और सनातन छह गोस्वामी वृंदावन के खुद कहां रहते थे? पेड़ों के नीचे। पर भगवान की खुशी के लिए, साधारण प्रजा के लिए उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े मंदिर बनाए। तो ये मंदिर जो बनते हैं भक्तों की सुविधा के लिए नहीं, भगवान की सुविधा के लिए। और एक स्थान बनता है जहां लोग दर्शन के लिए आ सकें। जैसे आपके पंजाबी भाव में जब वो छोटा सा मंदिर था, कौन सी गली में, तो थोड़े लोग आते थे। आपके पंजाबी भाव का बड़ा मंदिर है थोड़ा, तो और ज्यादा भक्त आ रहे हैं। अभी प्रयास किया जा रहा है रोहिणी आपके इलाके में एक सुंदर मंदिर बनाया जाए। तो ये मंदिर बनेगा, इसे हजारों लोग आकर्षित होंगे, हजारों लोग आएंगे रोज भगवान का दर्शन देने के लिए। और जैसे आप जानते हो भाव ये है कि इस मंदिर में पंचतत्व विग्रह की स्थापना हो। तो मेरे ख्याल से ये आपके दिल्ली में पहला मंदिर होगा पंचतत्व की मूर्तियों के साथ। तो आप सब मिलकर ये मंदिर बनाइए और भगवान के प्रचार के लिए ग्रंथों के वितरण की भी आवश्यकता है। जैसे आज के श्लोकों में, तीन श्लोकों में एक का भाव यही है कि भक्तों का भाव रहता है कि लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान का वितरण किया जाए। तो ज्ञान का वितरण आप कैसे करोगे? प्रभुपाद जी कहते थे आप लोगों को कहोगे कुछ उपदेश और सुनेंगे और 5 मिनट बाद भूल जाएंगे, है ना। आप लोगों को 4 श्लोक सुना दो, थोड़ी कथा सुना दो, सुनेंगे और थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। पर अगर आप उनके हाथ में ग्रंथ पहुंचाओगे तो इन ग्रंथों को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे और किसी और को भी देंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने ग्रंथों की सेवा पर इतना बल दिया। तो आपके पंजाबी बाग का मंदिर, रोहिणी का मंदिर, हर साल आप लोग मैराथन करते हो, ये साल भी करोगे? करोगे? थक तो नहीं गए? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करें, है ना। एक तरह से माया का मैराथन चल रहा है। मैराथन समझते हो ना, मैराथन मतलब बड़ा प्रयास। तो माया हर रूप से प्रयास करते जाती है क्या, लोगों को कृष्णा भगवान भुला दें, है कि नहीं। और माया का मैराथन चलता है कितने महीने साल में? 12 महीने, 365 दिन, 24 घंटे। और आप भक्त ग्रंथों का मैराथन करते हो साल में 1 महीने के लिए। 11 महीने तो माया का मैराथन फुल स्पीड जाता है। दिसंबर गीता जयंती के महीने में आप प्रयास करते हो मैराथन, माया मैराथन को थोड़ा रोकने के लिए। तो माया का मैराथन रहता है सारा साल, है कि नहीं। तो उसी प्रकार हमारे में ये उत्साह होना चाहिए कि हम भगवान का संदेश पहुंचाएं। उस भगवान का संदेश आगे पहुंचाने का सबसे सरल साधन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण साधन ग्रंथों का वितरण। तो आप सब अभी से शुरू कर दो सोचने के लिए। अक्टूबर लगभग समाप्त हो गया है ना, अभी से सोचना शुरू कर दो कि इस साल आपने ग्रंथों के मैराथन में लोगों को कैसे जोड़ना है भगवान की सेवा में। और आप सोचोगे नहीं नहीं नहीं, हमने तो सबको जोड़ लिया है। आप आश्चर्य हो गए कि अगर आप सोचोगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे जिसके द्वारा आप औरों को जोड़ सको। तो संक्षेप में आज के एक रूप से आज हमने 5, 6, 7 श्लोकों का वर्णन किया है। आज के श्लोकों में सबसे पहले महाराज चित्रकेतु अंगिरा मुनि और नारदा का आभार प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा से उनकी अज्ञानता दूर हो गई। आप सब अगर अपने जीवन को देखो तो आप सब भी पैदा हुए थे अज्ञानता में, पल रहे थे अज्ञानता में, फिर किसी न किसी माध्यम से आप किसी भक्त के संबंध में आए तो आपको भक्तों ने क्या कहा, या ग्रंथ के संबंध में आपको शिक्षा मिली कि हमें ये जीवन पशु जैसे नहीं बिताना चाहिए, है ना, हमें इसका उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। और भक्ति लता बीज, भक्ति का बीज प्राप्त होता है साधु संघ द्वारा। ये साधु संघ प्राप्त होता है भक्त साधु की संगत से और ग्रंथ साधु की संगत से। और ये जो भक्ति का बीज फिर उगता कैसे है, जब आप श्रवणम कीर्तनम करते हो। तो आप सब भक्त के संबंध में आए, फिर आपने जाप करना शुरू किया, भक्त के संबंध में आना शुरू किया, ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया और सबका उत्साह बढ़ते गया। और जैसे भजन क्रिया करते हो फिर आगे जाकर अनर्थ निवृत्ति होती है। तो चित्रकेतु महाराज आभार प्रकट कर रहे हैं नारद और अंगिरा का कि उनकी जो उदासी है, शोक है, अब दूर हो रहा है, क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है किसके द्वारा, इन दो महान संतों के द्वारा। और आगे चित्रकेतु महाराज ने कहा, हालांकि आप दो आत्मज्ञानी हो पर आपका व्यवहार ऐसे है कि आप इसको, इस बात को ढकते हो। दूसरे शब्दों में भगवान के जो भक्त हैं, चाहे कितने भी ऊंचे भक्त हों, वो कभी ये नहीं भाव रखते कि हम बड़े एडवांस भक्त हैं, उनमें हमेशा विनम्रता का भाव रहता है। और जो वैष्णव और ब्राह्मण हैं वो भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हैं। हम कई बार हम भारत में सुनते हैं लोग, हम वैष्णव हैं पर उनका जो आचरण है वैष्णव जैसे नहीं दिखता। तो वैष्णव का जो आचरण है वो भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि हमें हमारा आचरण के द्वारा धर्म के संदेश को प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये नहीं कि मुंह में राम राम बगल में, ये भाव नहीं होना चाहिए। मुंह में राम राम, हृदय में राम राम, मतलब कि हमारा जो आचरण है बिल्कुल शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। तो श्लोक नंबर 11 में चित्रकेतु महाराज ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण और वैष्णव हैं वो भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय भक्त हैं। उनके मन में यही भावना रहती है कि सारे विश्व का भ्रमण किया जाए, किस लिए, विश्व का दर्शन लेने के लिए, इसलिए कि लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए। जैसे श्री प्रभुपाद जी गए, पूरे विश्व का भ्रमण किया उन्होंने 11 दफा, जब बीमार भी थे उन्होंने प्रचार नहीं कम किया, क्यों, उनके मन में एक ही भाव था, लोगों का उद्धार। और कठिन स्थिति में भी जब उनका भौतिक दृष्टि से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद नहीं रोका, क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ें अज्ञानता को दूर करने के लिए। अगर इस संस्था के द्वारा ग्रंथों के वितरण की सेवा पर इतना बल दिया जाता है, इस भावना से नहीं कि कुछ धन प्राप्त होगा, इस भावना से कि लोग पढ़ेंगे इन ग्रंथों को और क्या क्या लाभ होगा, अज्ञानता दूर होगी। और भक्तों का यह भाव रहता है अज्ञानता दूर किया जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने आप सबको खास आदेश दिया है, जो क्या है, जारे रखो कृष्ण उपदेश, जिसे मिलो उसे कृष्ण का उपदेश दो। इन ग्रंथों में क्या है, कृष्ण का उपदेश। तो इसी भाव को आगे चित्रकेतु महाराज ने आगे के 4 श्लोकों में प्रस्तुत किया है। और इस श्लोक में उन्होंने अनेक संतों का वर्णन किया है और कहा है ये सारे संत और आप दो अंगिरा और नारदा सबके मन में एक ही भाव है कि दूसरों की अज्ञानता को दूर किया जाए। तो जो असली संत है उसके मन में यही भाव रहता है कि समाज को सुखी बनाया जाए, और सुखी कैसे बना सकते हो, इस ज्ञान के वितरण के द्वारा। और जैसे हम कह चुके हैं, भक्ति सिद्धांत जी कहते थे कि अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो केवल इस दिव्य ज्ञान की कमी है। और ये दिव्य ज्ञान की कमी कैसे दूर होगी? प्रचार द्वारा। तो आप भक्तों में ये प्रचार का उत्साह रहना चाहिए, और जब तक शरीर में ताकत है उस प्रचार भी करते रहना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे वैष्णव को पहचान क्या है कि वो कितने लोगों को जोड़ता है भक्ति में। तो आप सब प्रयास करो, भगवान आपका सहयोग देंगे सफलता प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा। थोड़ी देर में तो मुझे भक्तों ने एक नोट भेजा है याद दिलाने के लिए, ये साल मैराथन का कोटा, पिछले साल कितनी किताबें की थी? हाँ, पिछले साल आप भक्तों ने मिलकर, बैठिए पांच मिनट और, पिछले साल आप भक्तों ने मिलकर कितने ग्रंथ बांटे? 2,40,000। और उससे पिछले साल क्या था?
2,00,000।
और उससे पिछले साल 1,50,000। और उससे पिछले 1,25,000। उससे पिछले 1,00,000। और उससे पिछले और कम। तो हर साल आप देखते हो कि आप भक्तों ने मिलकर ये निर्णय किया कि हमें पिछले साल के मुकाबले में बढ़ाना चाहिए। तो ये साल कितना होना चाहिए? रोहिणी और पंजाबी भाग एक साथ है ना मैराथन में? मैराथन में रोहिणी और पंजाबी भाग एक साथ रहेंगे। जब मंदिर बन जाएगा तो अलग अलग, अभी तो मंदिर बनने तक आप सब एक साथ हो, ठीक है? तो ये साल क्या टारगेट होना चाहिए? 3,00,000। बड़ी अच्छी बात है। और अभी आपका रोहिणी का मंदिर का कार्य भी और एक महीने में शुरू होने जा रहा है। फिर आप सबको वहां आकर सेवा करना पड़ेगा, कार सेवा, ईंटों को लाओ। हमारा जो पूना का मंदिर बन रहा है, उस मंदिर का उद्घाटन फरवरी में होने वाला है और भारत के राष्ट्रपति शायद करेंगे, तो अभी पक्का नहीं है पर लग रहा है। तो उस मंदिर के साथ 40,000 लोग जुड़े थे वो मंदिर बनाने में। 40,000 लोगों ने दान दिया है वो मंदिर को बनाने में। टोटल खर्चा कोई 30 करोड़ का है, और 40,00,000 भक्त जुड़े हैं, और 3 साल के अंदर उन्होंने मंदिर तैयार किया है। तो अगर पूना में 40,000 लोगों को जोड़ सकते हैं तो यहां तो आपको और भी ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि भक्तों में उत्साह था। जो मंदिर के भक्त, कांग्रेगेशन भक्त, सब में बड़ा उत्साह था। तो सब जुड़े, सबने कहा हमने यह मंदिर बनाना है। पहले 4 साल का टारगेट था, 3 साल में बना लिया, और सबने जाकर दूसरों को जोड़ा, एक ने किसी और को जोड़ा, दूसरे ने तीसरे को जोड़ा। तो इस प्रकार उनके पास 40,000 डोनर्स का नाम और पता है जिन्होंने एक ईंट दी या 2 ईंट दिए भगवान का मंदिर बनाने के। तो अगर पूना में हो सकता है तो दिल्ली में नहीं हो सकता कि पूना में सत्ययुग है, दिल्ली में कलयुग है? कुछ खास अंतर तो है। मतलब ये है, जहां भक्तों का उत्साह रहता है वहां सफलता भी आती है। तो जहां भक्तों में यह भाव हो, नहीं हम क्यों करें, दूसरों को करने दो, हमें क्या मिलेगा, हमारा नाम थोड़ी आएगा उधर, भगवान तो बड़े प्रसन्न होंगे। तो आप सब प्रयास कीजिएगा मंदिर बनाने में और मैराथन को सफल बनाने में। आप सबने खुद ही कहा कि ये सब हमारा 3,00,000 कोटा होना चाहिए। तो अगर 3,00,000 हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो प्रयास करोगे? ओके। हरे कृष्ण। एक दो प्रश्न ले सकते हैं, मुझे जाना है।
हरे कृष्णा। तो सभी भक्त लोग बैठे हैं अभी, जिनको बैठे बैठे दर्द हो गए खड़ा होकर साइड में कॉर्नर पे आ सकते हैं, टांगों में दर्द है तो। लेकिन प्रसाद की व्यवस्था सभी भक्तों के लिए की गई है, सभी लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। इस बीच अगर किसी का प्रश्न है तो महाराज एक दो प्रश्न ले सकेंगे। हाथ खड़ा करें,
मुझे खुद जाना है।
अब प्रश्न पूछे।
हरे कृष्णा। गुरु महाराज, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि एक दीक्षित भक्त और एक शिष्य के अंदर बहुत फर्क होता है, तो दया करके ये बताएंगे कि
एक दीक्षित भक्त
और एक शिष्य में।
हाँ,
एक दीक्षित भक्त और शिष्य में बहुत फर्क होता है, एक लेक्चर में मैंने सुना था, तो कृपया करके ये बताएंगे क्या दोनों में फर्क होता है।
दीक्षित भक्त और शिष्य एक ही चीज है मेरे विचार से। तो सेम थिंग, दीक्षित भक्त शिष्य भी होता है, और शिष्य वो है जो सचमुच गुरु के आदेश का पालन करता है। ये नहीं, अगर कई बार भक्तों में भाव रहता है हमने दीक्षा ले ली बस, पर हम नियमों का पालन नहीं करते, शिक्षा का पालन नहीं करते, तो उसका क्या फायदा। तो शिष्य और दीक्षित भक्त, और दीक्षा का लाभ जब है जब आप नियमों का पालन करने को तैयार हो। अगर नियमों का पालन करने को तैयार नहीं हो और मन में अगर कुछ और भाव है फिर दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए इस्कॉन संस्था में हम लोग 2-3 साल तक दीक्षा नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि शिष्य ठीक समझे दीक्षा की जिम्मेदारियों को।
हरे कृष्ण महाराज, जैसे यहाँ पे हम किंग केतु के संदर्भ में देखते हैं कि जो इनकी रानियां थी उन्होंने ईर्ष्या द्वेष के भाव में आके उनके बेटे की हत्या की, तो उन्होंने ईर्ष्या द्वेष के भाव में आके की या फिर जो अंगिरा मुनि थे उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था या अंगिरा मुनि की इच्छा से ऐसा हुआ, कैसे?
नहीं, उन्होंने उनका पता था कि बेटा सुख का कारण बनेगा दुख का भी। हमें उपदेश मिल रहा है कि भौतिक संसार में अगर कोई चीज आज सुख भी देगी कल वो दुख का कारण बन जाएगी। हमें भौतिक संसार में आकर्षित होना चाहिए भगवान के प्रति।
जैसे आपने बताया कि हमें बहुत अपने आप को पतित मानना चाहिए।
हाँ,
ये अपने आप को पतित मानने की भावना कैसे जागृत,
कैसे अनुकूल की जाए? सारे आध्यात्मिक गुण अनुकूल होते हैं ध्यान पूर्वक जाप करने के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम करोगे तो आध्यात्मिक गुण अनुकूल होंगे, श्रवणम कीर्तनम नहीं करोगे तो इन गुणों को अनुकूल करना बड़ा कठिन होगा। ठीक है, आई वांट टू स्टॉप। एक और क्वेश्चन।
हरे कृष्णा। सेम क्वेश्चन हमारे, जैसे सेवा करते हैं तो सेवा के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उस टाइम कैसे उन क्वालिटीज को मेंटेन किया जाए?
सेवा करते हैं तो साथ में जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और फिर पोजीशन मिल जाती है, प्रेसिडेंट बन जाओ, जीबीसी बन जाओ, गुरु बन जाओ, कुछ बन जाओ। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई इतना ऊंचा पद मिल गया, ऊंची जिम्मेदारी मिल गई तो हम घमंडी हो जाएं। हमारे में हमेशा विनम्रता का भाव रहना चाहिए, ये है एडवांस भक्त की निशानी। चित्रकेतु महाराज भी कह रहे थे, अंगिरा मुनि और नारद ऋषि, अब आत्मज्ञानी हो पर आप अपने अस्थि स्वरूप को ढक रहे हो। मतलब कि आत्मज्ञानी व्यक्ति भी कभी ये दावा नहीं करता कि मैं आत्मज्ञानी हूं। और अगर हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, वैसे तो आप सब जाप करते हो पर हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम ध्यान पूर्वक जाप करें, और ध्यान पूर्वक जाप करेंगे तो अनर्थ भी जल्दी से निकलेंगे, अनर्थ निवृत्ति, और साथ में जो आध्यात्मिक गुण जिनके विषय में आप पढ़ते हो, सुनते हो रोज, ये भी आप अनुकूल कर पाओगे। ये सब निर्भर है कितने ध्यान से आप जप माला कर रहे हो। ओके, हरे कृष्णा।